तो उर्दू की जो किताबें हैं वो क्या अभी तक मौजूद हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू की बुक्स जो हैं वो अब भी लिखी जा रही हैं। लिखी क्या मतलब, यानी प्रिंट की जा रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, वो कभी नहीं रुकी 1980 से आज तक। और हर दफा एक नई नस्ल परवान चढ़ती है, वो उसको लेती है और उसको पढ़ना शुरू कर देती है। तो वो है, लेकिन इन जनरल पढ़ने का चूंकि रुझान कम हुआ, तो इसकी वजह से उसी प्रोपोर्शन से ये भी कम हुआ था। लेकिन अब रिसेंटली ये देखने में आया है कि वो एकदम से उनकी जो सेल कह लीजिए वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसमें लोगों ने दोबारा से उसकी यानी डिमांड करनी शुरू की है कि हमें ये पढ़ना है। और इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये सवाल बार बार उठता है, और अब टीवी पे भी कई दफा पूछा गया और दूसरे मुजाकरों में, तो वो पूछते हैं कि भाई ये अब तक क्यों पॉपुलर है और ये क्यों मतलब ये पढ़ी जाती है, इसमें क्या खास बात है। और फिर एक एक सवाल और उठता है, यानी अभी मैं आ रहा हूँ एक मुजाकरे से ही जिसमें ये चीज डिस्कस की जा रही थी कि ये इब्ने सफी की किताबें जो हैं अयूब खान से लेके, ख्वाजा नाजिमुद्दीन से लेके, और फिर हकीम सईद हुए, और फिर अबुल खैर कशफी साहब हुए, और फिर हसन अस्करी साहब हुए, और फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब हुए, और बैजार लखनवी साहब हुए, ये सारे लोग पढ़ते थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे, ये पढ़ते थे, और उसके बाद इन लोगों का एक मेंटल लेवल था। उसके बाद आप आते चले जाएं तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर्स पढ़ रहे हैं, उसको वर्कर्स पढ़ रहे हैं, मिल के मजदूर पढ़ रहे हैं, रिक्शे वाला पढ़ रहा है और पान वाला पढ़ रहा है। मीन्स ऑल दीज पीपल वर रीडिंग दीज बुक्स। तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसा ऐसी क्या चीज है, क्या हम कोई और अदीब ऐसा देखते हैं जिसके यहाँ ये चीज हमें मिल जाए। अब ये सवाल उठ रहा है, मैं वो सवाल दोहरा रहा हूँ जो अब मुजाकरों में लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बड़ा अदीब है उसकी किताब शायद कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल तो पढ़ रहा होगा और उसका उस पर फख्र भी कर रहा होगा कि जनाब मैं फलां को पढ़ता हूँ और फलां को पढ़ता हूँ, कि मैं काफका को पढ़ता हूँ, लेट्स से हम बाहर की मिसाल अगर दें, जी मैं मॉपसा को पढ़ता हूँ, तो क्या रिक्शे वाला भी कह रहा है कि मैं उसे पढ़ता हूँ? नहीं, वो नहीं पढ़ता फिर। या रिक्शे वाला जो चीज पढ़ रहा है उमन उसको फिर इंटेलेक्चुअल या वो अदीब नहीं पढ़ रहे। लेकिन यहाँ पे आप आके देखते हैं कि इब्ने सफी को, आज मैं अभी मिसाल दे रहा था वहां पे, बैजार लखनवी साहब का एक खत मैंने दिखाया लोगों को जिसमें उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि भाई ये किताब नहीं आती तो बड़ी तशनगी रहती है, उसके लिए मुझे कुछ और पढ़ना पड़ता है, तो जल्दी भेज दिया करो। ये उन्होंने अब्बू को खत लिखा। बैजार लखनवी साहब को मालूम है बहुत बड़े शायर थे और बहुत बड़े मतलब बुजुर्ग आदमी थे, है जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ जिनका बहुत मशहूर है, आपको याद होगा। और फिर मैंने एक खत दिखाया जो एक पठान ड्राइवर ने लिखा था, जिसने अपनी सादा जबान में किसी से लिखवाया था और उसने यही कहा था भाई किताब क्यों नहीं आ रही और क्या, तो जिन्होंने उनके लिए ट्रांसक्राइब किया था खत, उन्होंने लिखा भाई ये एक अनपढ़ आदमी है लेकिन इसके पास आपकी किताबों की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है और ये पढ़वा के सुनता है। तो अब ये जो है ये एक अजीब फिनोमिनन था, इसको अब लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं वो जमहूरी अदब, यानी जो अदब ऐसा हो जिसके ऊपर तमाम जो सेगमेंट्स हैं आपकी सोसाइटी के तमाम तबकात जो हो वे एक साथ उसको पढ़ते हो और उसमें बिलीव करते हो और उसको उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हो, और उसके अंदर जो चीजें हैं क्या वो हमें वो चीजें दे रही हैं अखलाकियात की जो एक माशरे की नशोनुमा में जरूरी हैं। तो जगह जगह आप देख लें कि उनके इदारियों में अब्बू के और किताबों में होता था कानून का एहतराम सिखाते थे, अल्लाह की हाकमियत की बात करते थे, अल्लाह की डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कोई बड़ा इस्लामी निजाम या कोई वैसे लाने की जरूरत या इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें सारे निजाम खुद नाफिज हो जाएंगे, आपका माशरा आगे चल पड़ेगा। तो जब ये बुनियादी मैसेजेस या बुनियादी पैगाम आदमी को उन कैप्सूल्स में मिले जिनको वो जो वो मीठे हों उसके लिए, तो वो यकीनन उसको लेगा। और वो कैप्सूल आप यूं समझ लें कि ये दर्द ये चीजें ऐसी उसमें मिल रही हैं कि वो मरगूब हैं एक इंटेलेक्चुअल को भी और वो मरगूब हैं एक मेहनत कश को भी। तो आप बताइए कि फिर इसको इसकी पॉपुलैरिटी कैसे कम हो सकती है।